ओम शांति। हमें जो टॉपिक मिला था कि सेवा केंद्र को योग गुफा कैसे बनाए, तो जैसा एक योगी अपने योग गुफा में निरंतर योग तपस्या करता है और उसके कारण वो योग गुफा का वायुमंडल पावरफुल बनता है और उसके सानिध्य में जो भी कोई आता है तो उसकी वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, तो वैसा सेवा केंद्र पर भी निरंतर योग साधना की तो वहाँ का ही वायुमंडल पावरफुल बना के यानी बना सकती है। जैसा एक तपस्वी है यानी ऋषि, यानी वो तपस्या करता है तो तपस्या के लिए प्रकृति का माध्यम यानी चुनता है, चुनाव करता है, उसमें से वो जैसा प्रकृति में जो वृक्ष है वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या करता है या पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करता है, वह नदी किनारे बैठता है या झरने के पास बैठता है या समुद्र के किनारे पर बैठकर तपस्या करता है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उस स्थानों पर यानी जो शांति के वाइब्रेशन रहती है और उस शांति के वाइब्रेशन के कारण उसमें एकाग्रता जल्दी आ जाती है और उसके एक साथ योग साधना में यानी वो जल्दी सफलता प्राप्त करता है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा भी जब कराची में रहते थे तो उस समय क्या करते थे यानी समुद्र के किनारे पे यानी योग्य वस्तु को लेके जाते थे और वहां पर वो योग साधना करते थे, तो इस प्रकार यानी उनके मन में जल्दी एकाग्रता हो जाती थी और वो योग का अच्छा अनुभव करते थे। तो इस प्रकार यानी जो योगी लोग है, ये ऋषि मुनि लोग है सन्यासी, वो यानी ये प्रकृति का बाकी स्थानों से यानी योग गुफा को सर्वश्रेष्ठ समझते, क्योंकि वहां पर योग साधना करने से यानी जो भी योगी योग गुफा में साधना करता है तो क्या होता है, जो ऊर्जा निर्माण होती है तो उसका कहीं ना ऐसा कि जो ऊर्जा निर्माण होती है वो उसमें यानी गुफा में जमा हो जाती है और उसके कारण वो वायुमंडल पावरफुल हो जाता है, तो उसके लिए उसके मन की एकाग्रता जल्दी हो जाती है और उसको जो साधना करता है उसमें उसको सहयोग मिलता है और वो अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा उन लोगों का कई ना है ऐसा ऋषि मुनियों का। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि जैसा जो योग गुफाई है यानी गुफाएं तो अनेक प्रकार की है, क्योंकि उनके नाम गिनाए जाए अपन तो हजारों की संख्या में हो सकता है। तो वो गुफाएं कुछ यानी मनुष्य निर्मित है और कुछ क्या है यानी निसर्ग निर्मित है, यानी प्रकृति अनुसार ऑटोमेटिक वो बनी गई है। तो ऐसे गुफा में यानी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। तो जैसा गौतम बुद्ध के बारे में बताते कि उसने जो भी साधना यानी योग गुफा में की थी और उसके कारण उसने ऐसी असीम शक्ति प्राप्त की थी। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं, शिकागो जाने के पहले उन्होंने यानी वो माउंट आबू में आए थे बोलते यहाँ पर, और यहाँ पर तो एक गुफा है उसमें तपस्या की थी उन्होंने, तो उसका नाम चंपा गुफा कहते हैं। तो आप में से किसने देखा वो चंपा गुफा? हाँ, बाहर से देखा चंपा गुफा। तो भाई साहब ने जब होमवर्क दिया था उसने बोला था आपको गुफा देखना पड़ेगा, तो हम भी वो गुफा देखने के लिए गए थे जो टोड रॉक्स है ना यानी रघुनाथ मंदिर के पास, उसके ऊपर वो गुफा है यानी 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाओ तो लेफ्ट हैंड में वो गुफा है, मगर वहां पर वो ताला लगा था। तो हमने बाकी लोगों को पूछा, एक सन्यासी था वो नीचे, उसको पूछा तो वो बोले ताला लगा रहता है और इसकी चाबी वो रघुनाथ मंदिर के पुजारी उनके पास रहती है, मगर वो किसी ने दी नहीं चाबी। तो बाहर से हमने देखा तो बंद थी, मगर वो खिड़की से देखा तो वो छोटी सी गुफा है, मगर वहां पर बहुत ऐसे मेरे को वाइब्रेशन ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन लगी उस स्थान पर जब मैं गया, तो अभी भी देखो वाइब्रेशन है वहां पर। तो जब वो शिकागो गए बोलते तो वहां पर 3 मास यानी 1898 में वहां पर आए थे बोलते स्वामी विवेकानंद, और उस गुफा में उसने तपस्या की थी। तो तपस्या करके इतनी शक्ति उनको प्राप्त हुई बोलते कि बाद में वहां पर जो धर्म सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था तो उसी में वहां पर भाग लिया था उन्होंने, और उसी से सर्व विश्व में यानी अपने भारत का और हिंदू धर्म का उसने संदेश दिया था। तो वो जो भी शक्ति उनको प्राप्त हुई थी तो वो गुफा से हुई थी। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि जैसे अपना सेवा केंद्र है उसको यानी अपन योग गुफा कैसे बनाए, उसका वातावरण कैसा करें। जैसा जो सन्यासी है अपने योग उपाय क्या करता है, निरंतर योग साधना करता है। तो कई सन्यासी उसके पहले क्या करते हैं, यानी अपने शरीर को भस्म लगा लेते, राख लगा लेते। तो उसकी यही मान्यता है कि वो लगाने से क्या होता है, एक शरीर का आकर्षण है, वो आकर्षण नहीं रहता, वह एक आत्मस्मृति की, आत्मा की स्मृति रहती है, यही उनका उद्देश्य है, उसके लिए वो भस्म लगाते हैं। तो ऐसा वो निरंतर योग साधना करते हैं। वैसा हमें भी सेवा केंद्र पर कैसी निरंतर साधना करेंगे, जैसे अपने पांडव भवन में बाबा के कमरे में है, अखंड योग साधना चलती रहती है, हो वैराग्य की यानी शरीर का भान मुक्तन ऐसी भी है नहीं एक। तो जैसा अपने बाबा के कमरे में अखंड योग साधना चलती है, जब भी जाओ आप अमृत वेला से लेकर रात्रि 9 बजे 11 बजे तक कोई ना कोई वहां पर बैठा ही रहता है। और बाद में समझो यानी 11 बजे के बाद जो भी अपने भाई लोग है सिक्योरिटी करने वाले, वो भी वहां पर बैठते, यानी 11 बजे से 2 बजे तक वो लोग तपस्या करते वहां पर। और बाद में बाबा तो बैठे मगर कोई तो योग साधना करने वाला चाहिए ना वहां पर, क्योंकि अपन योग के वाइब्रेशन है कि तभी तो पावरफुल स्थान बनेंगे ना। और बाद में ये तीव्र पुरुषार्थी लोग रहते हैं, वो 2 बजे के बाद योग साधना करते हैं, और अमृत वेले में तो सर्वसाधारण सभी लोग बैठते हैं। तो वहां पर क्या होता है, अखंड योग साधना चलती है। तो उसका वाइब्रेशन इतना पावरफुल है बाबा कमरे का, तो विश्व में किसी कोने में उतना पावरफुल वाइब्रेशन नहीं है। तो वो योग साधना यानी इसके कारण ही वो है वहां पर। तो वैसा सेवा केंद्र पर यानी कैसी यानी योग गुफा बनाकर साधना करे। तो हमारे नागपुर में सेंटर हमने देखा, वहां पर एक बहन थी, उन्होंने जैसा जनवरी मास है तो उसने एक मास तक अखंड यानी 8 घंटे तक वहां पर तपस्या जारी रखी, यानी कोई ना कोई वहां पर बैठा रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हर एक बहन को यानी वो ड्यूटी दे दिया, उन्हें एक एक घंटा सभी ने वहां पर बैठकर तपस्या करना चाहिए। तो ऐसे वो लोगों ने एक मास तक कंटिन्यू यानी हर दिन वो 8 घंटे वो बाबा के कमरे में बैठते थे। तो इस प्रकार साधना की उन्हें तो वहां पर क्या होगा, जो वाइब्रेशन है पावरफुल बन गया। तो वो तो उन्हें एक मास के लिए की थी, तो हम सेवा केंद्र पर ऐसे कंटिन्यू कर सकती है। जैसे जो बड़ा सेंटर है, छोटे सेंटर में एक दो ही बहनें रहती है, मगर जो बड़ा सेंटर है उसमें तो ज्यादा लोग बहनें रहती है ना। तो जैसे हर एक बहन को ड्यूटी दे, एक एक घंटा वहां पर बैठकर बाबा के कमरे में योग साधना करूं, और कोई जिज्ञासु जो स्टूडेंट रहती है उसको भी दे दिया, तो ऐसा कंटिन्यू योग साधना हो सकती है 8 घंटे तक। तो इससे क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएगा, और वो कमरे के यानी जो भी सेंटर पर आएगा तो वो उसकी वृत्ति भी परिवर्तित हो जाएंगी, तो ये एक फायदा हो जाएगा उनको। तो मगर वो निरंतर योग साधना करने के लिए यानी जो भी योग साधना करते उनको कुछ बातों की धारणा करनी पड़ेगी, यानी तभी वो योग साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि जो यानी ये संपूर्ण नॉलेज, उसको संपूर्ण नॉलेज चाहिए, क्योंकि योग का आधार भी नॉलेज है। जितना हमारे बुद्धि में नॉलेज रहेगा उतना हम निरंतर बाबा को याद कर सकते हैं। इसलिए मनन चिंतन जितना भी करेंगे अपन तो हमारा नॉलेज बढ़ जाता है। जैसे मुरली है, डेली मुरली सुनते हम, तो उसमें से 10 यानी 5 टॉपिक निकालो, उस पर अच्छा सा मनन चिंतन करो तो हमारा नॉलेज बढ़ सकता है। दूसरी बात है निरंतर योग साधना करने के लिए यानी एक हमारे अंदर बाबा के प्रति प्रेम चाहिए। जब प्रेम, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है वही क्या करता है, बाबा उसके यानी याद आ सकता है, निरंतर याद कर सकता है। तो इसलिए प्रेम की चाहिए, यानी जिस भी व्यक्ति को जिसके प्रति प्रेम है वो व्यक्ति ऑटोमेटिक उसको याद आता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बाबा के प्रति यदि हमने प्रेम रखा, स्नेह रखा, तो बाबा ऑटोमेटिक हमें याद आएंगे और निरंतर बाबा की याद हम कर सकते। तीसरी बात है संपूर्ण पवित्रता। हमारे अंदर जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं आती तब तक हम बाबा को निरंतर याद नहीं कर सकते। जैसे बाबा ने भी, जैसे हम ब्राह्मण बने तो सबसे पहले बाबा ने कौन सा वरदान दिया, योगी भव पवित्र भव। तो यानी वो तो वरदान दिया मगर उनके साथ साथ हमें शक्ति भी दी, क्योंकि दुनिया के लोग पवित्र रहना यानी असंभव समझते, लेकिन हमने संभव करके दिखाया। उसका कारण क्या है, यानी बाबा ने उसके साथ शक्ति दी है, उसके आधार से हम अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर सकते हैं और उसके आधार से निरंतर बाबा को याद कर सकते हैं। बाद में है यानी एकाग्रता, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए एकाग्रता भी चाहिए हमारे। जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे तो हम बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि वैराग्य वृत्ति, जब तक हमारे मन में वैराग्य वृत्ति नहीं आती तब तक हम बाबा को यानी निरंतर याद कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये यानी ये दुनिया की यानी व्यक्ति वस्तु वैभव, इसके प्रति हमें वैराग्य की भावना चाहिए। तो इस पर हमारे सचिन भाई जी एक अच्छा मिसाल देते हैं कि जैसा वैराग्य के बारे में उसने वो गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं कि जैसा गौतम बुद्ध ने यानी तीन बातें देखी थी दुनिया की, जैसा एक वृद्ध व्यक्ति देखा था उसने कि एकदम शरीर उसका जर्जर हो गया और एकदम शक्तिहीन हो गया था और वो लाट यानी वो लकड़ी का आधार लेकर चल रहा था, तो वो जब देखा गौतम बुद्ध ने एकदम उसके मन में उसके प्रति दया की भावना निर्माण हो गई। और बाद में दूसरा दृश्य देखा उसने कि एक बीमार व्यक्ति यानी असाध्य बीमारी हुई थी उसको और उस बीमार के कारण वो क्या हो रहा था ऐसा चिल्ला रहा था, तो वो देखकर एकदम उसका वृद्ध एकदम दुख से ये हो गया कि दुनिया में कितने दुख है। और तीसरा दृश्य जो देखा उसने कि एक आरती चार लोग लेकर जा रहे थे और पीछे वाले लोग ऐसे रो रहे थे, तो ये जब तीनों दृश्य देखा तो एकदम उसको लगा कि संसार का ऐसा दुखमय संसार है बा, और दुखमय संसार हो तो इस ऐसी वैराग्य की भावना उसके अंदर निर्माण होगी। और उसी भावना से उसने एक दिन क्या किया, रात को यानी वो सब छोड़ करके जंगल की ओर चला गया। तो जब उसके साथ उनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना था, तो उसने उसको बोला कि राजकुमार आप ये सब इतना अखंड आपका राज्य है, ये आपकी पत्नी है बच्चे सबको छोड़कर आप जंगल की ओर जा रहे, तो एक बार तो पीछे मुड़कर देखो। तो उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरे को पीछे सब आग के लपटे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी देखो उसके मन में ही दुनिया के प्रति क्या वैराग्य की भावना निर्माण होगी। और भावना निर्माण होने के कारण उसने योग साधना की और वापस यानी जो दुनिया का दुख है उसके लिए कुछ कर सका वो, तो इस प्रकार यानी अपने मन में निरंतर बाबा को याद करना है तो उसके लिए वैराग्य की भावना भी चाहिए, तब हम बाप को निरंतर याद कर सकते हैं। और इस प्रकार एक सेंटर पर इस प्रकार ऐसी योग साधना करके वहां का वायुमंडल पावरफुल बना सकते हैं, जैसे सन्यासी निरंतर याद करता है। और दूसरी बात है सन्यासी और क्या करता है, जैसे भोजन पर भी कंट्रोल करता है क्योंकि उसको दिन भर योग साधना करनी पड़ती है, उसका बाकी तो काम धंधा रहता नहीं, जब भोजन पर वो कंट्रोल रखेगा तो वो ठीक से साधना कर सकेगा। तो ऐसे सन्यासियों का मन कहना है कि जैसा योग साधना करने के लिए यानी ज्यादा भोजन और मखमली वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति यानी शरीर कमजोर होता है योग साधने के लिए, वो योग साधना कर नहीं सकता। तो योग साधना के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हल्का भोजन और प्रकृति के सानिध्य में रहना पड़ेगा, तब उसका शक्तिशाली शरीर बनेगा और वो योग साधना ठीक से कर पाएगा। तो वैसा हमें भी योग साधना करनी है निरंतर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भोजन पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी जितना भी आवश्यक थे उतना भोजन लेना पड़ेगा, तो हम योग साधना ठीक ठाक कर सकते हैं। और तीसरी बात है जैसा सन्यासी लोग है यानी द्वापर युग के बाद में जो सन्यासी लोगों ने योग साधना की तो उसका उद्देश्य क्या रहता था, यानी विश्व का कल्याण हो जाए, स्वार्थ के लिए वो लोग योग साधना नहीं करते थे कि विश्व का कुछ तो कल्याण हो जाए, यानी उस समय भी देखो उसकी भावना कितनी अच्छी थी, ऊंची भावना थी कि हम जो साधना कर रहे उसके पीछे विश्व का कल्याण हो जाए। तो बाबा ही बोलते कि आप विश्व कल्याण के निमित्त हो कि आपको विश्व का कल्याण करना है। इस पर मेरे को एक प्रसंग याद आ रहा, जैसा शिव पुराण में दिखाते हैं कि जो दैत्य का गुरु शुक्राचार्य ये वो संजीवनी मंत्र के लिए एक बार शंकर जी के पास गया, तो जब वो शंकर जी के पास गया तो ये बात इंद्र को पता चली, तो बाद में इंद्र को भी लगा कि वो संजीवनी मंत्र मांगने के लिए शंकर जी के पास जा रहे, तो वो भी गया, तो वो पहले गया उसके, तो जब तब शंकर जी अपने योग साधना में यानी मगन थे तो वो साइड में बैठ गया, उसके बाद वो शुक्राचार्य गया तो वो एकदम उसके पाँव पर गिर पड़ा, गिरते ही एकदम उसकी साधना खुल गई। और बाद में उसने पूछा आप किस लक्ष्य से आए हैं, तो तब उसने बोला कि मेरे को यानी संजीवनी मंत्र चाहिए, तो संजीवनी मंत्र उस समय वो इंद्र ही बोला मेरे को भी चाहिए, तो दोनों भी वो संजीवनी मंत्र मांग रहे थे। तो बाद में वो शंकर जी ने बोला उसको कि व्यक्ति तो है और मंत्र मेरे पास एक ही है, तो क्योंकि एक ही कल्प में मैं एक ही व्यक्ति को एक ही मंत्र दे सकता हूँ, दोनों को उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी दोनों को भी, जो सक्सेस होगा उसको यानी वो मंत्र मैं दूंगा। तो बाद में उसने अपनी परीक्षा बताई क्योंकि उसके लिए बोले वृक्ष के नीचे उल्टा लटकना पड़ेगा और एक साल तक अन्न का और यानी पानी का त्याग करना पड़ेगा बोले, और नीचे यानी पत्ते की ऐसी धूप यानी धूप निकलेंगी बोले धुआं वो उसको पीना पड़ेगा, ये शर्त है बोलिए, जो पास होगा तो उसको मैं वो संजीवनी मंत्र दूंगा बोले। तो ये परीक्षा देख करके इंद्र घबरा गया, वो बोले मेरे से नहीं होता, उसने तो कट कर दिया, लेकिन देखो यानी शुक्राचार्य ने हिम्मत रखी मैं करूंगा बोले वाली। तो बाद में वो शंकर जी ने बोला कि ये मैं कठिन तपस्या है बोले, ये तपस्या करेंगे अब तो आपकी जान भी जा सकती है बोले। तो देखो उस समय उसने इतना अच्छा उत्तर दिया कि यदि बोले ये मैं विश्व यानी लोक कल्याण के लिए मंत्र मांग रहा हूँ बोले, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं बोले, यदि वो मंत्र मिल गया मेरे को तो मैं जो दैत्य लोग ये मरने मरते थे उसको मैं बचा सकता हूँ बोले। तो यानी उसके लिए मांग रहा बोले, उसके लिए मेरी जान भी चली जाएंगी तो मुझे परवाह नहीं बोले और मैं वो साधना करूंगा बोले। यानी देखो यानी उसकी भावना कहती विश्व कल्याण की, यानी विश्व कल्याण के लिए उसने सब कुछ किया। तो बाबा ने हमें निमित्त बनाया विश्व कल्याण के लिए, तो हमें भी विश्व की जो आत्मा है समझे दुखी आत्मा अशांत आत्मा है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी। और जो शक्ति हमारे पास तो नहीं तो बाबा से लेकर हम उनको दे सकते, जैसे दुनिया में दुखी लोग है समझो तो उसको हम सुख के वाइब्रेशन दे सकते, जो अशांत आत्मा है उसे शांति के वाइब्रेशन दे सकते, जो लोग यानी बीमार से तड़प रहे वो लोग तो उसको बाबा से शक्ति लेकर उसकी तड़पन दूर कर सकते हैं। जो लोग भटक रहे समझो शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसी आत्मा ही है ऐसे भटक रहे वायुमंडल में, उसको ठिकाना देने का कार्य हम कर सकते। तो इस प्रकार यदि पावरफुल ये वाइब्रेशन यानी योग साधना की हमने तो उसके आधार से हम विश्व का कल्याण भी कर सकते है। तो इस प्रकार संजीवनी मंत्र तो इस प्रकार वो कल्याण के लिए किया उसने। तो योग साधना करके हम भी कर सकते हैं। तो सेंटर पर भी देखो ये भी तपस्या करते बहने लोग भी, तो उसमें स्वार्थ की भावना नहीं रही। नहीं तो कई सेंटर पर क्या करते हैं योग भट्टी करते, मगर उसका लक्ष्य क्या रहते है कि सेंटर की जिज्ञासा है वो बढ़नी चाहिए या कोई साधन सुविधा मिलनी चाहिए, यानी सेंटर पर कोई साधन आ जाए। बाबा बोलते कोई ऐसे जिज्ञासा को टचिंग कर दो कि वो कुछ इनको साधन दे देंगे सेंटर के लिए। तो इस प्रकार के स्वार्थ के भाव से नहीं करना चाहिए क्योंकि बाबा तो बैठा है ना, जो कुछ करना है भगवान तो करेंगे क्योंकि वो स्थान उनका, अपन निमित्त बन के सब कुछ कर रहे। इसलिए निस्वार्थ भाव से जो भी अपन योग साधना करते हैं वो करना चाहिए, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। और एक चौथी बात है, जैसा जो योगी लोग है गुफा में तपस्या करते हैं तो बाहर क्या रहता है एकदम यानी इसका वाइब्रेशन पावरफुल रहता है कि गुफा के बाहर बोलते ऐसे यानी शेर चित्ते ऐसे भालू भी बैठते थे तो वो कुछ चीज नहीं करते थे बोलते, वाइब्रेशन के अंदर आते ही उसकी वृत्ति परिवर्तित हो जाती थी, यानी इतना योग में बल था बोलते। तो वैसे अभी 8-10 दिन के पहले संडे के अव्यक्तवाणी चले उसमें बाबा ने बोला था कि जब सेंटर में कोई चोर भी चोरी करने के लक्ष्य से आता है तो क्या करे, विधि बताए ना अपन क्या करना चाहिए। तो ऐसा हमने सेंटर पर भी योग का पावरफुल वाइब्रेशन यदि बनाई जाए तो वो क्या हो जाएगा, चोर भी यदि चोरी करने के लक्ष्य से आएगा तो उसकी वृत्ति परिवर्तित हो जाएगा, या कोई बुरे विचार से सेंटर पर आएगा तो उसकी वृत्ति भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये योग बल का पावर है समझो। तो इस प्रकार पावरफुल योग साधना करके हम कर सकते है। तो जैसा अपने यज्ञ हिस्ट्री में आता है कि जो हापुड़ का हंगामा हुआ था उस समय वाकई लोग बहुत विरोध कर रहे थे कि यहाँ से ब्रह्मा कुमारी को हटाओ, तो उस समय यानी बाबा ने मम्मा को भेजा था वहां पर जाके उन वो सब जो परिस्थिति उसको ठीक करो बाबूले। जब मम्मा गई तो देखा का वो लोग बहुत हंगामा कर रहे थे और तब मम्मा कमरे में एकदम जाकर बाबा के योग साधना में मगन थी बैठ गई थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि आपके मम्मा को बुलाओ उसको हमको मिलना है। तो उस समय क्या हुआ उसने वो गेट भी तोड़ दिया था बोलते आगे का। तो बाद में जो लोग थे वो बोल रहे थे कि आप में से सभी लोग नहीं एक मम्मा को मिलने के लिए जा सकते, एक को परमिशन दिया। तो वो जब गया दौड़ दौड़ के गया तो मम्मा वहां पर अपने कमरे में क्या कर रही थी, योग बाबा के याद में मगन थी। तो जैसे ही उसने वो वायुमंडल में प्रवेश किया तो करते बराबर क्या हो गए, वो पहले एक तो झगड़े की भावना थी या निगेटिव भाव से वो आत्मा गया था मम्मा के पास, तो एकदम परिवर्तित हो गया, उसके अंदर पॉजिटिव भावना आ गई और वो उसको ऐसा साक्षात्कार हो गया मम्मा यानी जगदम्बा है बा, और मामा करके उसके चरणों में वो गिर गया। तो ये क्या हो गया, योग साधना का बल हो गया। तो इस प्रकार हम योग साधना करके यानी वायुमंडल पावरफुल बना सकते हैं। जैसा अपना सब्जेक्ट था यानी टॉपिक था कि यानी सेंटर पर यानी सेवा केंद्र को योग गुफा बना के वाइब्रेशन कैसे पावरफुल बना सकते, तो इस प्रकार सेंटर पर यानी योग साधना कंटिन्यू करके हम वहाँ का वायुमंडल पावरफुल बना सकते हैं। और पावरफुल बनने के बाद जो भी उस वायुमंडल में आत्मा आएगा तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।